ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम प्यारे बाप दादाजी के परम प्रिय संतानों, आत्माओं, बहनों और भाइयों, प्यारे बाबा तीनों कालों को जानने वाले हैं, इसलिए बाबा ने ब्रह्मा कुमार और कुमारी और अपनी ब्रह्मा बाबा की, जिनके रथ में शिव बाबा पधारे हैं, और मातेश्वरी जी की सबसे पहले सफेद व्हाइट ड्रेस निर्धारित की। ब्रह्मा बाबा अगर देखना हो कि जीवन में सादगी क्या होती है, तो ब्रह्मा बाबा उसके उदाहरण है। हीरे जवाहरात के व्यापारी और बन गए सफेद वस्त्रधारी प्रजापिता ब्रह्मा। अब अगर देखा जाए तो आज कहीं भी सारे विश्व में ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार जा रहे हों सफेद वस्त्र वाले, तो लोग उनको बहुत प्रेम से और बहुत आश्चर्य से देखते हैं कि ये कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि बाबा को पता था, शिव बाबा को, कि एक दिन इनको बनना है सफेद वस्त्रधारी नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंट व्हाइट फरिश्ते। अगर आप फरिश्ते को देखें तो कभी भी आप देखेंगे कि फरिश्ता सफेद के अतिरिक्त किसी रूप में दिखाई नहीं देगा। और फरिश्ता गौर से देखेंगे तो ना आपको फरिश्ता दिखेगा कि ये पुरुष है या स्त्री है, ये बच्चा है या बूढ़ा है, ये मोटा है या पतला है। फरिश्ता मैंने फरिश्ता, और फरिश्ता सबको सुखी देता है। कभी नहीं सुना होगा कि फरिश्ते ने किसी को दुख दिया हो। और अगर सिंपलेस्ट देखना हो, सबसे ज्यादा सादा, तो वो फरिश्ता है। वही सफेद वस्त्रधारी प्रजापिता ब्रह्मा आज किस रूप में है? आज सूक्ष्म वतन में फरिश्ता रूप में है। और हम सबका लक्ष्य भी क्या है? परम धाम जाने से भी पहले, सतयुग में जाने से भी पहले फरिश्ता रूप धारण करना। अब फरिश्ता हल्का होता है, फरिश्ता कभी सोता नहीं, फरिश्ता कभी थकता नहीं, फरिश्ता कभी एक स्थान पर नहीं रहता। और वही फरिश्ता जाके फिर परम धाम के द्वारा देवी देवता बनता है। अब फरिश्ते की सादगी का क्या कहना। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि साकार में मुझे फिर भी थोड़ा सा टाइम अपने लिए देना पड़ता था। फरिश्ते का तो सारा ही टाइम सेवा के लिए है। अब इतनी सिंपल लाइफ जिसमें सेवा सेवा और सेवा ही है, उसका फल क्या मिलता है? तो आप देखेंगे जो एक बार पक्के सादा जीवन को अपना लेता है, सिंपल लाइफ को, तो फिर क्या होता है, उस सादगी का उसको इतना फल मिलता है, इतना फल मिलता है और इतने जन्मों के लिए मिलता है कि उसको हर चीज प्राप्त हो जाती है। अब आप देखेंगे इस दुनिया के लोग केवल शरीर निर्वाह के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और वो शरीर निर्वाह भी अच्छी तरह नहीं होता। उनको कितना, अगर देखा जाए, कितना समय, कितना धन, कितनी शक्ति, कितनी मेहनत एक जीवन को बिताने में लगती है। इसलिए कहते हैं जीवन काट रहे हैं, जी रहे हैं, चल रहा है, तो उसकी भेंट में फरिश्ता रूप में जिन्होंने सादगी रखी उनकी जीवन कैसी है। तो आप देखेंगे मनुष्य कहते हैं हेल्दी वेल्दी और हैप्पी, यानी स्वस्थ धनवान और खुश रहना, यही जीवन का लक्ष्य है। आप जरा देवी देवताओं को अपने ही सद्युग के जीवन को सामने लाइए। हेल्दी हेल्दी नहीं, वहां एवर हेल्दी है। और कितने जन्मों के लिए एवर हेल्दी है? आधा कल्प के लिए। बाबा तो कहते हैं उससे भी ज्यादा उसका असर रहता है। क्यों हेल्दी है? कि सारे ही तत्व सतों पर धान है जिनका शरीर बनता है। नेचुरल जीवन है। देवताओं के जीवन में कोई भी चीज नकली या आर्टिफिशियल नहीं है। तो अगर नेचुरल लाइफ होगी, यहां तो लोग सैर करने सुबह जाते हैं, थोड़ी ऑक्सीजन ले लें। आप सोचो क्या श्री लक्ष्मी श्री नारायण सुबह सैर करने जाते हैं या थोड़ी ऑक्सीजन ले लें? आज के लोग भी ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, तरह तरह के साधन करते हैं, कोई वीट को स्प्राउट बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अब वो भी दिक्कत में आके, लेकिन हेल्दी फिर भी नहीं है। सारा जीवन रोगी और आयु भी पता नहीं। तो देवी देवताओं के हेल्थ की क्या निशानी है? कि आयु भी पूरी और रोग का तो नाम ही नहीं, ना रोग ना शोक। तो हेल्दी हुए कैसे? हुए कि पिछले जन्म में वो ब्राह्मण रूप से, अर्थात ब्रह्मा कुमार और कुमारी रूप से सादा रहे। वैसे भी कहते हैं सादा भोजन करोगे तो सुखी रहोगे। अब वेल्दी जो होता है, आजकल तो लोग कागज के नोट से समझते हैं मैं वेल्दी हो गया। अगर हेल्दी नहीं तो वेल्दी काहे का? वहां पर क्या है کہ اگر آپ دیکھیں ہر ایک آتما کو چاہے وہ پرجائی ہو اس کو اتنے سادھن اور دھن نیچرلی پراپت ہیں کہ کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. ویلدی وہ ہے جو قیمت دے کے چیز لے, یا جہاں جو چاہو جب چاہو اس کی قیمت ہی نہیں ہے. قدرت پرکرتی سب کام کرتی ہے. وہاں ہمیں ندیوں پہ ڈیم نہیں بنانے پڑتے, سڑکیں نہیں بنانی پڑتی, نکلی لائٹس نہیں لگانی پڑتی, سب پرکرتی کرتی ہے. اپنے آپ پرکرتی سمے پر بارش برساتی ہے, اپنے آپ پرکرتی ہر کام کرتی ہے. آپ کو تو خالی لے لینا ہے جتنا چاہیے, وہ بھی جتنا چاہیے. اور آج سمپل نہیں رہے تو کیا ہوا ہے کہ ہمارا پانی بوتلوں میں بک رہا, ہوا ہماری ساری پردوشت ہے, دھرتی بھی پردوشت ہے, اور ان تتووں کے بنے ہوئے شریر بھی تمو پردھان ہے. کون ویلدی ہوا؟ اچھا, وہاں ہیپینیس ڈھونڈنے کے لیے کچھ کشٹ ہی نہیں کرنا پڑتا, سبھی ہیپی ہے. اور یہاں کلب بنائے گئے ہیں, لافنگ کلب, ایک جا کر کے ہا 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 کرو, ہیپی بنو. بتاؤ تو کیا ہوا کہ سمپل لائف سے یہ سب پراپتیاں ہوئی. اب پرماتما نے جو نئی دنیا رچی وہ سمپل رچی, یا کہ آج کل کی طرح جس کو کہتے ہیں کمپلیکس یا کمپلیکیٹڈ رچی, اور اس کے آگے ہوتا کروکڈ. آج دیکھیے ہم سمارٹ فون بنا رہے ہیں, سمارٹ فون, سمارٹ سٹی بنا رہے ہیں, تو بتاؤ نہیں ہے تو بنا رہے ہیں. اور ستیوگ میں سب سے زیادہ سمارٹ ہیں, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن ہر چیز اپنے سمے پر, اپنے ستھان پر, اپنے طریقے سے ہوتی ہے. ستیوگ میں ہماری آنکھ کتنا دیکھتی ہے, ہماری آنکھ اتنا ہی دیکھتی ہے جتنا اس کو دیکھنا چاہیے, نہ کم نہ زیادہ. جتنا سمے تک دیکھنا چاہیے اتنا سمے تک ہی دیکھتی ہے, نہ کم نہ زیادہ. ہر اندری, یہاں تو کہتے ہیں سی نو ایول, برا دیکھو ہی نہیں, وہاں برا ہے ہی نہیں جو آپ کو سوچنا پڑے کہ برا ہے یا اچھا ہے. ہیئر نو ایول, وہاں کان کتنا سنتے ہیں, جتنا سننا چاہیے, جو سننا چاہیے, نہ کم نہ زیادہ. اس لیے وہاں ہر چیز اپنی مریادا میں رہتی ہے, اور یہاں کوئی بھی چیز مریادا میں نہیں ہے. آپ اپنے من کو کہیں ادھر جا تو وہ ادھر جائے گا, جائے گا ہی نہیں جہاں آپ لے جائیں گے. رات کو کہو گے سونا ہے تو نیند نہیں آئے گی, صبح آنکھ کھولنی ہے تو کشٹ سے کھلے گی. تو بتاؤ سمپل لائف اچھی ہے یا کہ دوسری لائف؟ تو بابا ہمیں کیا کر رہا ہے, ہمیں سمپل بنا رہا ہے. جتنا سمپل بن جائیں گے اتنا اونچے اور شریشت رہیں گے. اب بتائیے کہ سب سے اونچی ستھان کون سا ہے, سارے ترلوک میں سب سے اونچا ستھان کون سا ہے, کون سا ہے, کون سا ہے جی؟ اونچا ستھان, اونچے سے اونچا پرم دھام. ٹھیک ہے, اب پرم دھام سب سے اونچا ستھان ہے. اب وہاں پر ہم آتمائیں اور ہمارے پرم پتا پرماتما किस रूप में रहते हैं? एक अति सूक्ष्म छोटी से छोटी बिंदी, इससे ज्यादा तो सिंपल कुछ नहीं हो सकता, उससे कम तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो हमारा स्थान कौन सा है फिर? ऊंचे से ऊंचा, कोई साधारण बिंदी नहीं है। उस बिंदी में पूरे हमारे पार्ट, पूरे सृष्टि चक्र का भरा हुआ, और परमपिता परमात्मा में तो सभी आत्माओं का पार्ट मिलाकर, जैसे बीज में सब कुछ होता है, वो भरा हुआ लेकिन बिंदु रूप में है। तो क्या है फिर वहां? अगर आत्मा की कंप्लीट 100% कंप्लीट अवस्था है, जिसमें सबसे सार समाया हुआ है, लोग कहते हैं बिंदु में सिंधु समाया हुआ है, तो वो कहाँ है? परम धाम में है, और इसलिए आत्मा ऊंचे से ऊंची जगह पर रहती है, उसकी सारी शक्ति उसके अंदर है। अब नीचे कौन आता है? नीचे आत्माएं आती हैं या के परमात्मा आते हैं पाठ बजाने? आत्माएं आती हैं। अच्छा, आत्माएं भी जब आती हैं कंप्लीट, तो कंप्लीट दुनिया में आती हैं, और शरीर धारण करने के बाद भी आत्माएं सिंपल रहती हैं, और इसलिए स्वर्ग में रहती हैं। स्वर्ग में सिंपल लोग रहते हैं या नरक में सिंपल लोग रहते हैं? जो निचले नहीं बैठते, बंदर की तरह उछलते रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं। अब बाबा कहता है कि आप जितना टाइम स्वर्ग में रहते हो, आपको कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ता, जो है जितना है उतना ही करना पड़ता। अर्थात जिसको हम कहते हैं शांति। अब शांति की जननी कौन है? सुख और शांति की जननी है पवित्रता, और पवित्रता का मतलब होता है सिंपल, क्योंकि सिंपल जो है उसी के लिए इंग्लिश भाषा में कहते हैं प्योर एंड सिंपल, हमेशा कहते हैं प्योर एंड सिंपल। अच्छा, पवित्र ही सिंपल हो सकता है और सिंपल ही पवित्र होगा, तो नतीजा क्या है? अगर मन के संकल्प प्योर हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो किस चीज की जननी होगी? कि हमारा मन सदा शांत रहेगा और सुखी रहेगा। पवित्रता सुख शांति की जननी है, तो मन में पवित्रता है तो पहले पहले तो मन शांत होगा, क्योंकि अगर शांति नहीं तो सुख भी नहीं हो सकता, सुख तो उससे भी आगे है। इसलिए सिंपलिसिटी की निशानी क्या हुई जीवन में, अगर हमने देखना हो हम कितने सिंपल हैं, तो आप देखिए हमारा मन कितना शांत रहता है और कितना आनंदित रहता है, सुखी रहता है। ब्राह्मण भी पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन एक अगर ब्राह्मण का सुबह से शाम तक मन ठंडा ठार न रहे, ब्राह्मण को इतना ज्ञान है कि पूरी धारणा से पहले भी उसको इतना ज्ञान होता है कि वो अशांत हो ही नहीं सकता, ना उसको चिंता है ना उसको जल्दी है। क्योंकि चिंता इसलिए नहीं है कि हर चीज ड्रामा में निश्चित है, जल्दी इसलिए नहीं है कि ड्रामा के अनुसार कोई जल्दी की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए अगर ब्राह्मण होकर सुबह से शाम तक किसी वक्त भी हमें थोड़ा सा संघर्ष आता है, कभी जल्दी करनी पड़ती है, कभी मन ना जाते हुए अशांत हो जाता है, तो सिंपलिसिटी की कमी। सिंपल को तो दुनिया के लोग भी छोड़ जाते हैं। किसी भी सिंपल का फायदे क्या है कि सिंपल से कोई ईर्ष्या नहीं करता, सिंपल से कोई कंपटीशन नहीं करता, सिंपल से किसी की दुश्मनी नहीं रहती, अर्थात सिंपल की सारी ऑपोजिशन दूर है। अगर सिंपल नहीं होगा तो कोई ना कोई उससे ईर्ष्या करने वाला होगा, कोई ना कोई उसको क्रिटिसाइज करने वाला होगा, ऐसा नहीं ऐसा है। अब सिंपल को क्या क्रिटिसाइज करोगे। इसी प्रकार से हर प्रकार की विघन से वो बचा रहता है। अब सिंपल है तो चलेगा भी ठीक तरह, ठोकर खा के गिरेगा नहीं। सिंपल है तो उसकी हर एक्टिविटी स्लो स्पीड पे होगी और हमेशा कोई किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट जो होता है, दुर्घटना, वो स्पीड को तेज करने से होती है। और जितनी स्पीड तेज होती जाती है उतनी ही दुर्घटना भयानक होती जाती है। आज आप देखो एक बैलगाड़ी जा रही है, उससे कोई गिर जाए तो मरेगा नहीं, लेकिन अगर कोई मोटर कार से या रेलवे से गिर जाए और प्लेन से गिर जाए तो उसका पता भी नहीं लगेगा, स्पीड तेज है। इसलिए कहा जाता है कि जब अति हो जाती है तो फिर अंत आता है। तो सिंपल व्यक्ति जो है, ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, आपने कई पिक्चर देखे होंगे बाबा के, बाबा नेपाली टोपी पहन के बैठा है, बाबा किसान वाली पगड़ी पहन के बैठा है, लेकिन हम लोग तो बाबा के साथ रहे हैं सिर्फ खुश करने के लिए। कोई माता स्वेटर बुन के ले आई बाबा के लिए, अब बाबा उसको पहन लेगा कि माता खुश हो जाए कि मेरा स्वेटर बाबा ने स्वीकार किया, उसके बाद वो बाबा के शरीर पर कभी नजर नहीं आएगा। बाबा मान लो कोई नेपाली लोग आ गए, बाबा को टोपी पहना दी, बाबा पहन लेगा उनका सम्मान रखने के लिए। बाबा हमेशा कहते थे छोटे का बड़े का सबका सम्मान रखो। अच्छा, सिंपल व्यक्ति हरेक का सम्मान रखेगा, जो थोड़ा कम सिंपल होगा वो सोचेगा मैं इसका सम्मान करूं या इसको मेरा सम्मान करना, वो सोच में पड़ जाएगा। लेकिन थ्रू आउट बाबा ने एक ही ड्रेस रखी, कहां हीरे जवाहरात के व्यापारी, कहां एक ही ड्रेस। आप सोचो आप बाबा के कमरे में जाओ और बैठो और बाबा नेपाली टोपी पहने हुए हो तो आपको वो ब्रह्मा बाबा की फीलिंग आएगी, आएगी ही नहीं। इसलिए बाबा कहते थे कि अगर हमें फरिश्ता रूप बनना है तो हमें इतना सिंपल रहना, इतना सिंपल रहना कि जितना कोई रह सकता। तो सिंपल को क्या फायदा होता है, उसकी नेचर भी सिंपल हो जाती है, उसको मान अपमान की फीलिंग नहीं आती, उसको निरादर महसूस ही नहीं होता। कोई उसका लाख निरादर करने की कोशिश भी करे उसको फील ही नहीं होगा, ईगो ही नहीं है, अभिमान ही नहीं है। तो आपके ख्याल में कोई शरीरधारी जिसके अंदर परमात्मा आ जाए और लोग कहें कि इसके अंदर भगवान आते हैं तो दुनिया वाले उसको छोड़ेंगे क्या, कुछ बोलेंगे? तो बाबा को सब सुना कुछ ना। बाबा कहता था मुझे हीरे के जवाहरात के तौर पर कभी किसी ने कुछ निरादर करने की कोशिश नहीं की, लेकिन सबसे ज्यादा कलंक लगाए ये है वो है, पर बाबा को फील हुआ नहीं। हम भी देखते हैं, हमारे पास कई आ जाते हैं, ज्ञान सुनते हैं, वो हमारे घराने के ही नहीं होते। हम सोचते हैं इतनी ठीक बात कह रहे हैं, इसके दिमाग में ही नहीं आती, और हम इरिटेट हो जाते हैं, सोचते हैं कि काहे को डिबेट कर रहा है। बाबा इरिटेट भी नहीं होता था। तो सिंपल व्यक्ति मतलब है इस दुनिया में तो बहुत अच्छा है। ना कोई सिंपल की कॉपी कर सकता है। अब हम लोग सफेद वस्त्र पहनते हैं, दुनिया में जाओ कॉपी कर लो, अब लोग सफेद वस्त्र पहन ही नहीं सकते। बहुत सारे दुकानों पर तो सफेद वस्त्र मिलता ही नहीं। तो बाबा कहता है देखो आप हो गए फैशनेबल या वो हो गए फैशनेबल, सादगी भी एक फैशन है लेकिन वो कोई अपना सकता है, और सादगी वाले को टाइम भी वेस्ट नहीं होता। कई कहते हैं कि कोई फिलीपींस की रानी थी, उसके पास पता नहीं कितने हजार जूते थे। अब सोचो कि वो चुनती रहती होगी ये पहनू या ये पहनू, टाइम वेस्ट रखना पड़ता है। इसलिए बाबा कहता है सिंपल को हर चीज मिलेगी, देवताओं को कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ता था। इतना साधन थे कि जहां मर्जी दुनिया में रहो, ना जमीन का मूल था और रहते भी धरती पर थे। आज के लोग कोई आसमान में टंगा हुआ है, कोई 14वें फ्लोर पे रह रहा है, कोई 20वें फ्लोर पे रह रहा है, वो तो धरती पर रह ही नहीं रहे। अच्छा, कुदरत ने सब कुछ दिया था, आज मनुष्य सुरंग बनाता है पहाड़ के बीच में और अखबारों में आ जाता है कि देखो इंजीनियर ने कमाल कर दिया, सुरंग बना दी, कोई लंबा पुल बना दिया। बाबा कहते हैं वहां जरूरत ही नहीं थी, ना डॉक्टर की, किसी ने रोगी होना ही नहीं, ना इंजीनियर की, कुदरती इंजीनियर थी, उसको पता था कहां से पानी बहाना है और हर चीज मर्यादा में थी। इसलिए हमें बाबा ने सिखाया है, आज का ब्राह्मण भी दुनिया का भी सफेद वस्त्र पहनता और ब्राह्मण के नाम से वो उसकी रोजी रोटी चलती अच्छी तरह से। तो ये तो ऊपर का है, लेकिन अंदर सिंपलिसिटी शुरू होती है हमारे मन से। हमारा मन सिंपल है, उसकी पक्की निशानी क्या है, जिसको कहा जाता है संकल्प सिद्धि। आप देखेंगे कई बार कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, आप कहते हैं अरे मैंने अभी अभी आपको याद किया था, आप आ गए। तो कभी कभी होता है ना, लेकिन जहां हमेशा ये होता हो तो संकल्प सिद्धि का अर्थ यह है कि देवता और ब्राह्मणों को भी जो भी संकल्प करें वो सफल हो, सहफल, उसका फल जरूर हो, निष्फल ना हो। यानी उतने ही संकल्प करेंगे जितने होने हैं, और जो होना होगा उसका ही देवता को संकल्प आएगा। यानी 1:1, एक संकल्प किया वो सिद्ध जरूर होगा। अच्छा, आज क्या है, आज आपने कुछ भी करना हो तो कितने सारे संकल्प करते हैं तो एक सिद्ध होता, और इसलिए बहुत फोकस करना पड़ता है। अरे इतने संकल्प सोचते रहते हैं ये हटाओ ये हटाओ। अच्छा, तो नतीजा क्या है, कहते हैं वन टन ऑफ थ्योरी, अंश ऑफ प्रैक्टिस। यानी एक टन में से एक अंश निकलता है। आज हर चीज में ऐसा ही है, मेहनत कितनी फल कितना। अब बाबा कहते सतयुग में मेहनत है ही नहीं, फल ही फल है। तो एक संकल्प उसका एक फल, इसको कहते हैं संकल्प सिद्धि। तो उसमें क्या है कि कोई व्यर्थ नहीं है। आज व्यर्थ सबसे ज्यादा है, कोई चीज करनी हो आपको कितनी प्लानिंग करनी पड़ती, कितना सोचना पड़ता है, क्या कुछ करना पड़ता है व्यर्थ। अब हमारे पास इस वक्त बाबा के घर में 25,000 भाई बहन है, अच्छा आराम से बैठे हैं। कोई भी भारत का नेता भी नेता आता है, वो देखता है कि हमारे तो हर वक्त उछलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ हिलते झुलते ही रहते हैं, ये बैठे हैं आराम से बैठे हैं। अभी भी मार्जिन है हमारे अंदर, लेकिन दुनिया की भेंट में तो शांत है। ये कैसे हो गया, कोई ऐसे तो नहीं कहता, ऑर्डर तो नहीं करता। वो कहते हैं ऑर्डर करना मैंने है नहीं, यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बड़ी पुलिस रखी जाती है, वो कोर्ट बनाए जाते हैं, बाबा कहता है वहां नेचुरल लॉ एंड ऑर्डर है, सतयुग में कोई घड़ी बांधता है क्या आपके ख्याल में? यहां तो महंगी घड़ी पहन के समझते हम बहुत अच्छे हो गए, जैसे 12 घंटे के 3 घंटे 13 हो जाएंगे उनके, तो बुद्धि का फेर है ना। तो बाबा कहता है देखो आज भी पंछी हैं, सुबह आप देखोगे आकाश में जा रहे हैं लाइनें बना के खेलते हुए, शाम को अपने आप आ रहे हैं, कहां साइबेरिया उसके पंछी भरतपुर में आ रहे हैं, हर साल आते हैं, अब उनको कौन गाइड करता है? इसलिए बाबा कहता है कि आत्मा के अंदर देवताओं के अंदर इतने शुद्ध संस्कार थे कि बोझ था ही नहीं। अब देवताओं को कोई हिस्ट्री पढ़ाई जाती है? नहीं, 8 जन्म होते हैं और यहां हमारे को पढ़ाई ना भी जाए लेकिन कम से कम 42 जन्मों का बोझ आत्मा के ऊपर है सूक्ष्म में, तो वो बोझ लिए फिरती है तो उड़ेगी कैसे? इसलिए ऊंचे से ऊंचा श्रेष्ठ स्टेज है बिंदु स्टेज, जहां आप सार रूप हैं लेकिन कोई उसका तो नाम ही है शांति धाम, स्वीट साइलेंस हो, लेकिन आत्मा और परमात्मा की बिंदियों में फर्क है। परमात्मा बिंदी स्वरूप सदा ही बिंदी स्वरूप रहता है, वो यहां भी आते हैं तो भी बिंदी स्वरूप ही रहते, अपना शरीर भी नहीं लेते, इतनी उनके अंदर पावर है कि बिंदी स्वरूप रहते हैं, घटिया से घटिया दुनिया में भी आ जाते हैं तो भी उनको संग का रंग नहीं लगता, उनका रंग लगता और अपनी चुंबक मैग्नेटिक शक्ति से दूसरों को भी ठीक कर देते हैं, फिर भी बिंदु स्वरूप रहते हैं, तो ये तो परमात्मा है। अच्छा फिर हम, तो बाबा कहता है 3 बिंदियां हैं, एक मेरी बिंदी, एक आपकी बिंदी और एक ड्रामा की बिंदी। अब हमेशा कहते हैं 3 बिंदियों का तिलक सुबह लगा के चलो तो आप सदा ही आनंदित हर्षित चिंता मुक्त बेफिक्र बादशाह रहोगे। अब 3 बिंदियों का तिलक बाबा ने बहुत अच्छा समझाया है कि मैं बिंदी तो सदा शिव हूं, कहीं भी रहूं मैं तो शिव ही हूं, कल्याणकारी हूं और शिव के लिए तो कहा ही जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। हम बिंदी जो हैं, हम भी आधा कल्प तो हम सुखी रहते हैं क्योंकि परमात्मा ने हमें जो कुछ भरा है हमारे अंदर वो देने से घटता नहीं। दुनिया में भी कहते हैं दान करो तो बड़ा पुण्य होगा, अब कोई कंबल दान करेगा कितने कंबल दान कर देगा, और कंबलों से तो जीवन नहीं चलता लोगों का। अब बाबा हमको क्या सिखाता है, हमारे चारों दान जो हम करते हैं हमारा कुछ नहीं घटता बढ़ता है। पहला दान हम करते हैं ज्ञान का, ज्ञान को कहा जाता रोशनी, तो आप देखेंगे रसम चल पड़ी है, चलाई बाबा ने संगम पर थी पर आज भी चलती है, कोई भी उद्घाटन करेंगे बाबा ने सज्जू का उद्घाटन किया तो रोशनी जलाएंगे और रोशनी से दूसरी रोशनियों को जलाएंगे, कोई जन्मदिन भी मनाएगा अपने नए साल का उद्घाटन हुआ रोशनी। अब आप देखो एक दीपक से दूसरा दीपक जलाते हैं तो पहले दीपक की लाइट घटती है क्या? उसकी उतनी रहती है, दूसरा भी जल जाता है, अगर सारे जल जाए तो दिवाली हो जाती है। अच्छा दूसरा हमारा सब्जेक्ट है योग, इससे शक्ति मिलती है, हम योग लगा रहे हैं हमें शक्ति मिल रही है, हम किसी को भी योग लगाना सिखा दें वो अपनी शक्ति लेगा तो हमारी घट जाएगी क्या? और ही वातावरण अच्छा हो जाएगा। बस जा रही है आप उसमें बैठे हैं, कोई भागा भागा आ रहा है आप उसको पकड़ के बस में चढ़ा देते हैं, आपका तो कुछ नहीं करता। तीसरा है दैवी गुणों की धारणा, अब सतयुग में तो कोई ना तो कोई ज्ञान दे सकता है, ना कोई योग लगवा सकता है, ना दैवी गुणों की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दैवी गुण क्या, खुशबू की तरह है। आपके एक कोई गुलाब का फूल दे दे खुशबूदार, इसको सूंघो जितना चाहिए सूंघो, अच्छा दूसरे को भी सूंघाओ, क्या उस गुलाब की खुशबू घट जाएगी? वही रहेगी। और अगर आप रोज गार्डन में चले जाओ तो पकड़ने की भी जरूरत नहीं। अगर सारे खुशबूदार देवता हो जाएं, तो आप सोचो किसी का कुछ घटेगा थोड़ी, तुम्हारे तो सब्जेक्ट ही ऐसे हैं। चौथा सेवा, और सेवा से खुशी मिलती है। अब खुशी बांटने से खुशी घटती है या बढ़ती है? तुम्हारा तो बिजनेस ही प्रॉफिटेबल है, इसलिए बाबा कहता है परंतु सतयुग में आप ये प्रॉफिट नहीं कमा सकते, कोई लेने वाला ही नहीं है। लेकिन इतना आप कमा लेते हैं जो दो युग तक चलता है। तो हमारी बिंदी में ये है, फिर बाबा शरीर लेता है अपना नहीं लेता, हम अपना भी लेते हैं और उसको अपना समझने भी लग जाते हैं। अब कल युग में क्या है, इतनी भारी चीज कोई उड़ने वाली चीज ले ले और उसके अंदर फंस जाए तो आत्मा ऊपर जा ही नहीं सकती, इतना मोटा शरीर लिया हो और उसको पकड़ के बैठे हैं। तब बाबा कहता है कि अशरीरी बनने का अभ्यास करो, रहो इसमें, दुनिया को तो ज्ञान ही नहीं आत्मा क्या चीज है, अशरीरी कैसे बनना है। तो बाबा कहते हैं चाहे दो मिनट, एक मिनट, आधा मिनट ये अभ्यास करेंगे तो अंत समय इजी रहेगा आपको। अच्छा, तो हमारी बिंदी जो है उसको हमने फैला लिया है, 84 जन्म में ले आए, इतना हिसाब किताब कर लिया। अब अगर हमको उसी तरह की स्टेट धारण करनी है जिसके बाद हम देवता बने, तो हमें सब समेट के बिंदी बनना होगा। अब बिंदी बनना इतना आसान नहीं है, फैलाना तो आसान होता है, इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल, और वो भी सार रूप में। इसलिए बाबा कहता कि पहले तुम फरिश्ता बनो, काम काज करो, चलो फिरो, ट्रस्टी बनो, यानी साखी बन के, निमित्त बन के काम करो। अब उसमें भी मन की बात है, हम घर में रह के सब कुछ यूज करते हुए भी निमित्त बन सकते हैं, और मन से बनना है। अब जितना कोई बने तो निमित्त बनेंगे तो आपको फरिश्ता की महसूसता आएगी, और फिर क्या होगा, फिर आपको धीरे धीरे बिंदी की आएगी। उसके लिए तीन शक्तियां बताई जाती हैं। अगर हमको बिंदी बनना है या फरिश्ता बनना है या यहां सादगी रखनी है, सादगी का भी यही मतलब होता है, किसी से कोई मतलब नहीं, अपना काम करना, तो एक तो सहन शक्ति चाहिए बहुत बड़ी, और सतयुग में ही सहन शक्ति नहीं होगी। जो कुछ आप यहां कर लेंगे फाइनल, सतयुग में उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सहन शक्ति का क्या अर्थ है, सहन करना हमें इसलिए पड़ता है वास्तव में कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर या तो अभिमान है या लोभ है, पुरानी चीज है। अच्छा सहन कर लिया, पता है, जैसे रोग आया, मैं बीमार हो गया तो मुझे पता है मेरा कोई हिसाब चुकतू हो रहा है, तो मैं खुशी से सहन करता हूँ, चलो कट जाएगा। तो सहन शक्ति आती की जरूरत तो तब पड़ती है अगर हम कोई टेढ़ा रास्ता लेते हैं, लेकिन चलो ले लिया, सहन कर लिया, उसका अर्थ समझ लिया कि मुझे सहन करने से मेरा बचाव है। लेकिन अगर उसके साथ समाने की शक्ति नहीं हुई, सहन किया फिर वर्णन किया, देखो जी मैं तो ऐसा है, मैं ऐसा, मुझे इतना सहन करवा रहे हैं, आपको क्या पता, तो मतलब ये हुआ समाया तो नहीं। अब बाबा कहते हैं सागर के बच्चे हैं तुम्हारे अंदर, तो पहाड़ भी चला जाए तो पता नहीं लगना चाहिए। अगर हाजमा ठीक है, आत्मा में सहन शक्ति है, तो समाने की भी होगी। अगर हाजमा खराब है तो दूसरे को उगलते रहेंगे, प्रसाद बांटते रहेंगे, गड़बड़। लेकिन सबसे तीसरी शक्ति है समेटने की। तो इस समय हमें पुराने संस्कारों को भी खत्म करना है, हर चीज को समेटना है और समेट के उसको अच्छी चीज को बिंदी में भरना है। अब आप सोचो कितना बड़ा काम है कि कोई व्यक्ति समेटने में लगा हुआ हो, उसको कहे तू फैला, वो फैलाएगा क्या?
नहीं।
तो ये तीन शक्तियां जो हैं, सतयुग में इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना वहां योग की जरूरत, ना ज्ञान की जरूरत, ना सेवा की, कुछ कोई लेने वाला ही नहीं होगा। और तीन शक्तियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देवताओं की क्वालिफिकेशन क्या है? सर्वगुण संपन्न, कहीं नहीं है सर्वशक्ति संपन्न। तो सर्वगुण संपन्न जो है उसके लिए अब बाबा कहता है कि मैं सदा सदा शिव आपको भी आके आप समान बनाता हूं, कि आप भी मेरी तरह समझते हुए कि फैला हुआ है अंदर बहुत संस्कार है, उसको फिनिश करो और फिर बिंदी को जाना। अब तीसरी बड़ी बात है ड्रामा, ये भी बड़ी वंडरफुल चीज है। जैसे हमारे अंदर 84 जन्मों का पाठ भरा है फिर भी हम बिंदी हैं, क्या अर्थ हुआ? अगले जन्म में क्या होगा, या कल क्या होगा, या कल क्या हुआ था, वो तो हो गया, बड़ा सारा ड्रामा है। लेकिन बिंदी क्या कह रही है कि आज या इस वक्त मैं कहा। तो ड्रामा है तो बहुत लंबा चौड़ा हिस्ट्री, लेकिन बिंदी मैंने बिंदी बिंदी करके ड्रामा चलता है। इस वक्त हम इस हॉल में बैठे हैं, हम कुछ बातचीत कर रहे हैं, ये हमारा ड्रामा है। इसको भी बाबा कहता है पूरा होते बिंदी लगा दो। तो अगर हम इतने बड़े ड्रामा को भी बिंदी में लाएं, जैसे हमारे इतने आत्मा के संस्कार इतने फैले हुए हैं, ड्रामा क्या है? था तो वो बिंदी, परम धाम में भी ड्रामा के पार्ट हमारे अंदर था, बिंदी में था। अगर बिंदी को थोड़ा सा बढ़ाओ तो क्या बन जाएगा? चक्कर बन जाएगा। और बढ़ाओ यहां तक कि हम बढ़ा सकते हैं तो एक चक्कर बन जाएगा, वो होगा सर्कल। और चक्कर को घुमाना शुरू कर दो तो हो जाएगा साइकिल, ड्रामा साइकिल है बिंदी, लेकिन हम उसमें घूम रहे हैं। तब बाबा कहता है करो स्टॉप, करो स्टॉप, ना पीछे का याद रहे ना आगे का। तो ये जो बिंदी है ये सबसे डिफिकल्ट है, हैं तीनों बिंदियां। अब हमने बिंदु रूप भी बनना है, ड्रामा को भी बिंदु रूप बनाना है। इसलिए ये वाली जो बिंदी है इसमें हलचल नहीं होनी चाहिए। और आत्मा में भी हलचल इसलिए आती है कि वो ड्रामा पर खड़ा नहीं रहती। अब बाबा कहता है सार ये निकलता है कि हम सब कुछ जानते हैं, रोज अभ्यास करते हैं, चाहते भी हैं कि हम वो बन जाएं, तो ऐसी कौन सी बात है जो उसको हिला देती है? हम कमाई करते हैं उसको घटा देती है। तो इसलिए आप देखेंगे बाबा ने बहुत इम्पोर्टेंट सूक्ष्म हमको शिक्षा दी हुई है। अब वो शिक्षा क्या है हम जानते हैं उसको, कि किसी की भी जरा सी भी कमजोरी और कमी को अपने अंदर धारण नहीं करो। बस क्या मतलब हुआ कि अगर हमने इतनी सारी कमाई की प्योर और उसमें अपना नहीं दूसरे किसी का उसमें जरा सा इम्प्योर मिक्स कर लिया तो हमारी प्योर तो एडल्ट्रेटेड हो गया कि नहीं हो गया, डिल्यूटेड हो गया कि नहीं हो गया? फिर बाबा कहता है क्या इसका असर पड़ता है? अच्छा मेहनत करके सोच के अच्छा ठीक है उसकी कमी है उसको निकालो, हम लाइट स्वरूप तो बन सकते हैं मेहनत करके वो भी क्योंकि अंदर आ गया। लेकिन बाबा कहता आप लाइट हाउस नहीं बन सकते, आपकी सिंपलिसिटी की शक्ति, स्वच्छता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति दूसरे को वो असर नहीं ला सकते। इसलिए बाबा कहता है अगर हम ये स्टॉप कर दें, जैसे कमल होता है विष्णु के हाथ में वाटर प्रूफ, कि हम पर किसी का असर ना आए और हमारा असर किसी पर ना जाए। हमको ये भी देखना है मैं एक आत्मा हूँ, मैं दूसरे को अपनी विशेषता से प्रभावित ना करूं, तो वो मेरे साथ जुड़ जाए उसके साथ जुड़े, इसके लिए निमित्त बन के करना पड़ता है। तो सार ये हुआ कि हमें एक ही काम करना है अपनी बिंदी को बिंदी में आने के लिए और प्योर आने के लिए, कि किसी भी आत्मा के लिए कोई भी इम्प्रेशन अपने अंदर नहीं धारण करना, क्योंकि इम्प्रेशन धारण किया तो क्या मतलब हुआ, हमारा एक्सप्रेशन कमजोर हो गया। सिंपल बात है। मैं तो ये कहता हूं कमजोरी तो क्या, विशेषता भी किसी की हो उससे भी अपने अंदर धारण नहीं करना चाहिए। उस बिंदी से कनेक्शन रखेंगे तो आपको शक्ति महसूस होगी और आपको मंजिल दिखेगी। ओम शांति।